ऑफिस के बड़े हॉल में हल्की सी मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़ों के रोल रखे हुए थे। श्यामली अपनी टेबल पर झुकी हुई थी। उसके सामने एक हल्के क्रीम रंग का कपड़ा फैला हुआ था। उसके हाथ में पेंसिल थी और वो उस कपड़े पर नई डिज़ाइन की लाइंस बना रही थी। उसकी उंगलियां बहुत तेज़ी से चल रही थीं, जैसे वो खुद को काम में डुबो देना चाहती हो। टेबल पर रंगों के कई छोटे छोटे सैंपल रखे थे। कभी वो एक सैंपल उठाती, कभी दूसरे से मिलाकर देखती, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि उसका मन पूरी तरह इस काम में नहीं है। अचानक उसका हाथ रुक गया, पेंसिल हवा में ही ठहर गई और उसके दिमाग में फिर वही चेहरा उभर आया, विश्वनाथ। उसकी आंखें, उसकी आवाज़, माई डियर वाइफ, वो शब्द जैसे फिर उसके कानों में गूंज गए। श्यामली ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। भगवान, उसने मन ही मन कहा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी उंगलियां धीरे से कपड़े पर चलने लगीं, लेकिन अब वो डिज़ाइन नहीं बना रही थी, बस यूं ही लाइनें खींच रही थी। क्यों मिस्टर राठौड़ को फिर से मेरी ज़िंदगी में ले आए? उसके मन में जैसे कई साल पुराने जख्म फिर से खुल गए। उसे याद आया वो वक्त जब वो सच में विश्वनाथ से बहुत प्यार करती थी, जब उसे लगता था कि वही उसका सब कुछ है, लेकिन फिर वही आदमी एक दिन उसकी ज़िंदगी से ऐसे चला गया था जैसे वो कभी था ही नहीं। श्यामली की उंगलियां कपड़े पर कस गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसने खुद से कहा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसकी आंखों में अब एक सख्त चमक आ गई। मैं उन्हें फिर से अपने करीब नहीं आने दूंगी। उसने पेंसिल टेबल पर रख दी। वो खुद को समझते क्या हैं? उसके मन में गुस्सा उभर आया। उनकी हमेशा से यही आदत रही है, हर बात पर हक जताने की। उसे होटल का वो पल याद आया जब विश्वनाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। उसकी पकड़, उसकी आंखें। श्यामली ने तुरंत सिर झटक दिया। बस बहुत हो गया। उसी वक्त पीछे से एक हल्की आवाज़ आई, श्यामली। श्यामली थोड़ी सी चौंक गई। उसने जल्दी से पलट कर देखा। दरवाजे के पास जतिन खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं और चेहरे पर हल्की सी झिझक दिखाई दे रही थी। जतिन कुछ पल वही खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो आगे क्या कहे। फिर वो धीरे धीरे उसकी टेबल की तरफ बढ़ा। तुम आज ऑफिस आई हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में सच में थोड़ा आश्चर्य था। मुझे लगा था कि शायद आज तुम नहीं आओगी। श्यामली की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। आप ऐसा क्यों सोच रहे थे सर? उसने पूछा। जतिन कुछ पल चुप रहा। उसकी नज़रें एक पल के लिए श्यामली के चेहरे पर ठहरी, जैसे वो उसके भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ऑफिस के बड़े हॉल में मशीनों की हल्की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। कपड़ों की खुशबू और रंगों का मिला जुला माहौल पूरे कमरे में फैला हुआ था। जतिन कुछ पल तक चुपचाप श्यामली को देखता रहा। उसकी नज़रें जैसे उसके चेहरे पर कुछ तलाश रही थीं। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम फोटोशूट के बाद कहाँ चली गई थी? श्यामली की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो कुछ पल चुप रही, जैसे सच में याद करने की कोशिश कर रही हो। सर, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। जतिन थोड़ा चौंकने का नाटक करते हुए बोला, क्या मतलब? श्यामली ने धीरे से कुर्सी की पीठ से टिकते हुए कहा, शूट के वक्त मुझे बहुत अजीब से चक्कर आ रहे थे। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ जैसे घूम रहा था, कैमरे की लाइट्स, लोगों की आवाजें, सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वो कुछ पल रुकी, उसके बाद उसने सिर हिलाया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। जतिन के चेहरे पर पहले तो एक पल के लिए गंभीरता आई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। वो तुरंत अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करने लगा। ओ, उसने सिर हिलाया, शायद थकान की वजह से हुआ होगा, लेकिन उसके मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। तो उसे सच में कुछ याद नहीं, न होटल, न वो रात। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी राहत भर गई। उसने फाइलों को थोड़ा कसकर पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, खैर, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो अच्छा है। श्यामली ने सिर हिलाया, जी सर, अब ठीक हूँ। जतिन ने एक पल के लिए उसकी टेबल पर फैले कपड़े और डिज़ाइन को देखा। अच्छा, तुम काम करो, फिर उसने हल्के से कहा, मैं चलता हूँ। श्यामली ने बस सिर हिला दिया। जतिन मुड़ा और धीरे धीरे वहां से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा था। राठौड़ ग्रुप का शानदार ऑफिस, ऊपर की मंजिल पर बना विशाल कैबिन, कांच की दीवारों से घिरा हुआ कमरा जहां से पूरा शहर साफ दिखाई देता था। विश्वनाथ अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर कई फाइलें खुली पड़ी थीं, लेकिन उसकी नज़रें उन पर नहीं थीं। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपकी दे रही थीं। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, श्यामली, उसकी आंखें, उसका गुस्सा और होटल के कमरे में उसके कांपते हुए हाथ। विश्वनाथ ने अचानक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस याद को दिमाग से निकालना चाहता हो। तभी टिक टिक, दरवाजे पर हल्की सी नौक हुई। कम इन। दरवाजा खुला। उसकी सेक्रेटरी अंदर आई, हाथ में टैबलेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। सर, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, आज दोपहर 3 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग है।
विश्वनाथ चुप बैठा रहा। सेक्रेटरी ने आगे कहना शुरू किया, और 4 बजे आपको सिंगापुर वाले क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन विश्वनाथ की नजरें अभी भी खिड़की के बाहर टिकी हुई थी, वो सुन ही नहीं रहा था। सेक्रेटरी थोड़ा रुक गई। सर? कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ा जोर से कहा, सर आप सुन रहे हैं ना? विश्वनाथ जैसे अचानक अपनी सोच से बाहर आया। हुँ? उसने हल्के से उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो। सेक्रेटरी ने फिर वही बातें दोहराई, लेकिन इस बार भी विश्वनाथ का ध्यान आधा ही था। कुछ पल बाद उसने अचानक कुर्सी से उठते हुए कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी चौंक गई। सर लेकिन, विश्वनाथ ने अपना कोट उठाते हुए कहा, मुझे कुछ और जरूरी काम है। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। और अगले ही पल वो तेज कदमों से कैबिन से बाहर निकल गया। सेक्रेटरी वहीं खड़ी रह गई। उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। ये सर को आज क्या हो गया है? उसने धीरे से खुद से कहा। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। टेबल पर रखी फाइलें, खुली हुई लैपटॉप स्क्रीन और खिड़की के बाहर फैला शहर, लेकिन कैबिन के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा था।